नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखो, ऋषि मुनियों की सभा है और भाई भाई की बातचीत हो रही है। ये महाभारत का शांति पर्व है, इसमें शिक्षा की बातें बहुत मिलती हैं। भीमसेन ने अर्जुन ने द्रौपदी ने तीनों ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप राज्य छोड़कर वन में मत जाओ। जिस उद्देश्य के लिए वन में जाना होता है वो काम तो आपका यहाँ क्षात्र धर्म का निर्वाह करने से ही हो जाएगा। कर्तव्य कर्म का पालन करने से, माने एक कर्तव्य का त्याग करोगे दूसरा कर्तव्य लोगे, उससे क्या फायदा है? उस कर्तव्य का ही पालन करो ना। ये बात चल रही थी तो अब युधिष्ठिर जी महाराज भीमसेन की बात का उत्तर देते हैं कि अरे भीमसेन, तेरे जीवन में हमने कभी संतोष नहीं देखा, तेरे जीवन में हमने प्रमाद ही प्रमाद देखा है, तेरे जीवन में खूब बल का अभिमान है, तुम सदाई उद्विग्न रहते हो, तुमने 100 दुर्योधन के भाइयों को मारने की प्रतिज्ञा की, इसलिए अब भी तुम्हारे अंदर इस राज्य का सुख भोगने का भाव है। यदि ऐसा ही है तो इससे तुमको सुख नहीं मिलेगा। निरामिषो विनिर्मुक्त है प्रशांत सुखी भवे। जिसके मन में कोई कामना नहीं रहती है वही व्यक्ति सुखी रहता है। भीमसेन, तुम मुझे क्या ये बात बताते हो? देखो, सारी पृथ्वी को प्राप्त करने के बाद मनुष्य को अपना एक पेट ही तो भरना होता है। सारी पृथ्वी का धन मिल जाएगा तो भीमसेन इसको सारी धन का उपयोग कहाँ करेगा? एक पेट ही तो पालना है, इससे ज्यादा और धन की क्या जरूरत रहेगी बताओ। और आज तक कोई अपने मन की इच्छा को पूरा नहीं कर सका। तन की इच्छा तो पूरी हो जाती है पर मन की इच्छा पूरी नहीं होती। एक दिन में मन की इच्छा पूरी नहीं होती, एक महीने में नहीं होती, एक साल में नहीं होती, और आयुषापि न शक्नुयात, पूरी आयु भर तुम मन की इच्छा पूरी करने में लगो कभी नहीं लगेगी। जो आग लकड़ी से पैदा हुई है वही आग उस लकड़ी को ही सबसे पहले खाती है। जितना उसमें ईंधन डालोगे उतना ही वो लकड़ी को जलाती रहेगी, और ईंधन डालना बंद कर दो अपने आप आग शांत हो जाएगी। इसी प्रकार से तुम अपनी इच्छाओं को जितना दबा लोगे उतना ही तुम्हारे अंदर सुख आदि की इच्छा नहीं होगी। मनुष्य अपने एक पेट के खातिर कितना पाप करता है, इसीलिए तुम यज्ञ आदि की प्रशंसा करते हो, ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हो। आप ये विचार करो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महापुरुष वे सब निराहार रह करके और भोगों से दूर रह करके कितने ऊंचे स्थान को प्राप्त हो गए थे भीमसेन। जाओ धर्म पर गहराई से विचार करो और त्याग का आश्रय लो। एक सिंह है वो भी पेट के खातिर कितने प्राणियों को मारता है और दूसरे प्राणी उसके पीछे पीछे पिछल्लुगु होकर चलते हैं कि हमको भी कुछ खाने को मिल जाए। ऐसे ही जो व्यक्ति धन को चाहने वाले होते हैं वे अपने से बड़ों के पीछे पीछे पिछल्लुगु बने हुए रहते हैं। भीमसेन सूखे पत्ते खाकर अथवा दांत से अन्न को चबा चबा कर अथवा केवल जल पीकर अथवा वायु पीकर बहुत से ऋषि मुनियों ने कितना ऊंचा लोक प्राप्त किया है। क्या तुमको वो ऋषि मुनि नहीं दिखते हैं? तुमको ये राजलक्ष्मी दिखती है? क्या कोई राजा आज तक सुखी हुआ एक ऋषि मुनि के समान? इसलिए अपने मनोरथों का आरंभ करना छोड़ दो और शोक रहित स्थान की प्राप्ति के लिए विचार करो। जिन्होंने भोग का परित्याग कर दिया वो कभी दुखी नहीं होते। भीमसेन दो मार्ग हैं, एक पितृयान मार्ग एक देवयान मार्ग। जो व्यक्ति निष्काम भाव से अनुष्ठान करने वाले, जो सकाम भाव से अनुष्ठान करने वाले हैं वे पितृयान मार्ग से जाते हैं, निष्काम भाव से कम काम करने वाले वे देवयान मार्ग से जाते हैं। अच्छे अच्छे ऋषि तपस्या से, ब्रह्मचर्य से, स्वाध्याय से अपने शरीर का त्याग करके वहां पहुंचते हैं जहां कहीं मृत्यु होती नहीं है। इसलिए संसार की इन बातों को छोड़ो, भोग और ऐश्वर्य की बातों को छोड़ो, ये बंधन में फंसाने वाले हैं। ये कहने के लिए तो बनता है कि राज लक्ष्मी प्राप्त कर लो और इसमें आसक्ति मत हो, ये कभी संभव है? बरसात में बैठ जाओ और गीले मत हो, धूल में बैठ जाओ और धूल मत लगने दो, ये सब अपने मन को ठगने की बातें हैं। भीमसेन तुमको पता नहीं है जनक जी महाराज ने कितनी अच्छी बात कही थी। राजा जनक तो एकदम निर्द्वंद्व महापुरुष थे। उन्होंने कहा है, विचार किया, अनंतम वतमे वित्तम यस्य मे नास्ति किंचन है। आज मेरे पास इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, बहुत धन है। अनंतम वतमे वित्तम यस्य मे नास्ति किंचन है, मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे दह्यति किंचन है। लेकिन उसमें जो भी धन है वो मेरे लिए कुछ नहीं है, मेरा नहीं है। आज ये सारी मिथिला नगरी जल भी जाए तो मेरा कोई इसमें जलने वाला नहीं है, क्यों मेरा धन है ही नहीं। तो तुम कहते हो कि राज लक्ष्मी लेकर के और ये करो वो करो। जनक जी ने कितनी अच्छी बात कही। देखो भीमसेन, प्रज्ञा प्रासाद मारुई है, अशोचन सोचते सोचतो जनान। जो व्यक्ति बुद्धि रूपी पर्वत के ऊपर, महल के ऊपर बैठ करके और शोक करने वाले लोगों को जो जमीन पर बैठे हुए हैं उनको देखता है तो वो शोक की अग्नि उसके ऊपर नहीं आती है। इनको जलता हुआ देखता है तो वो देखता है ये कैसे जल रहे हैं। ऐसे ही बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वे ज्ञान के द्वारा दुनिया को जलता हुआ देखकर समझ जाते हैं। देखो भीमसेन आत्मा है, ये सबका दृष्टा होता है, उस आत्मा को पहचानो। यस्तु वाचम बिजानाति, जो आदमी ब्रह्म ज्ञानियों की बात तो करता है और अपने को ब्रह्म ज्ञानी होना दिखाता है उसको ज्ञान का अभिमानी समझना चाहिए। अभी इसमें आया जैसे बातें करना और है भीमसेन, उसको गहराई से समझना और है, तुमने गहराई से नहीं समझा है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ये गीता में भी आया यहां भी आया। ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा, ऐसा कैसा श्लोक है ये। जब ये मनुष्य देखता है कि सब कुछ एक परमात्मा की संतान है, परमात्मा से ही पैदा हुए है, तब वह व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति इस गति को प्राप्त नहीं होते वे महामूर्ख होते हैं। इसलिए तुम उस गति की प्राप्ति के लिए ज्ञानियों की सी बातें मत करो, ज्ञानियों जैसा भीतर में भाव बनाओ। इतने में ही अर्जुन ने कहा, तूष्णीभूतम तु राजानम पुनरेव अर्जुन हो ब्रवीत। अब जब जो है यादव ये युधिष्ठिर महाराज चुप हो गए तो अर्जुन बोलने लगे, महाराज आपने जनक जी का उदाहरण तो दिया पर जनक जी का वो उदाहरण आपने नहीं दिया। कौन सा अर्जुन? कि वो हम बताते हैं आपको। देखो एक बार की बात है, जैसे आप इस समय निश्चय कर रहे हैं कि हम महल छोड़ करके राज्य छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसा का ऐसा निश्चय एक बार जनक जी ने भी किया था। उन्होंने भी यही कहा कि हम भिक्षा से निर्वाह करेंगे और राजपाट छोड़ के जंगल में जाएंगे। तो उनकी रानी ने उनको आकर फटकारना चालू किया। रानी ने देखा कि तो भिक्षा पात्र भी ले चुके हैं और एक धान मुट्ठी बस इतना ही खाना ऐसा व्रत ले रहे हैं, इनके अंदर किसी प्रकार का मात्सर्य आदि दोष भी नहीं है, परंतु ये बड़ी भारी मूर्खता कर रहे हैं। तो धन स्त्री राज्य और अग्नि अग्नि जो हरदम अग्नि जलती रहती है यज्ञ की अग्नि, उन सब को छोड़ करके और वो महल से निकलने के लिए तैयार हुए तो रानी आ गई पास में। और रानी आकर के और खूब जोर जोर से कहने लगी फटकारते हुए, ये धन धान्य समन्वित राज्य किसके लिए छोड़ रहे हो, क्यों छोड़ रहे हो? हाथ में खप्पर लेकर एक मुट्ठी धान के द्वारा निर्वाह करने का ये पागलपन आप पर कैसे सवार हो गया? जिस समय आपने राजगद्दी स्वीकार की थी उस समय आपने समस्त ब्राह्मणों के सामने प्रजा के सामने क्या प्रतिज्ञा की थी? यदि आप उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो अब संन्यास की प्रतिज्ञा आप लेने जा रहे हैं, उसका आप कैसे पालन करेंगे? क्या आप इस राज्य में कल्याण नहीं देखते? एक मुट्ठी धान से आप क्या अतिथियों का सत्कार करोगे कि देवताओं का करोगे कि ऋषियों का करोगे कि पितरों का करोगे? अद्य शक्यास्त्वया भर्तुम मोहगस्तेयम परिश्रम है, आज तो सब कुछ कर सकते हो पर आगे ये कर नहीं सकोगे तो फिर आपका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने कर्म से देवताओं को अतिथियों को पितरों को सबको तृप्त करें। और आप तो तीनों वेदों के ज्ञाता हो, तीनों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मणों को खूब यहां पर भोजन कराते थे, दान दक्षिणा देते थे, इनका भरण पोषण का जिम्मा आपने लिया है, ये आप कैसे करोगे? जब वन में एक मुट्ठी धान के द्वारा निर्वाह करने की सोचोगे तो फिर कैसे करोगे आप? अपुत्रा जननी तेद्य कौशल्या चापतिस्त्वया, इनकी पत्नी का नाम कौशल्या था, यदि आप राज लक्ष्मी छोड़ के जाओगे तो इस समय आपकी गति दर दर भटकने वाले पशु के समान होगी, स्वयवत कुत्ते के समान। और अपुत्रा जननी तेद्य, और आपकी मां पुत्रहीन समझी जाएगी, और ये आपकी पत्नी कौशल्या है, ये कौशल्या अपति हो जाएगी, इसके कोई पति है ही नहीं। आपके जीते जी लोग कहेंगे मुझे कि इसके कोई पति नहीं है, आपके साथ ही बराबर साथ देने वाले क्षत्रिय लोग जो आपसे कितनी बड़ी आशाएं रखते हैं, ये सब बिचारे निराश हो जाएंगे। कृपणा फल हेतु का इनकी ये दशा हो जाएगी। इन लोगों को सबको उदास करके आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे, प्रजा को किसके भरोसे छोड़ोगे। धर्म्यान दारान परित्यज्य यस्त्वम इच्छसि जीवितुम, सबका त्याग करके अकेला जियोगे। इसलिए तो आपको नया पाप लगेगा। माला है, गंदा आदि पदार्थ है, वस्त्र है, अलंकार है, ये कौन से काम के लिए छोड़ करके आप संन्यास का रूप ले रहे हो। आप संपूर्ण प्राणियों के आश्रय स्थल है, इनकी सेवा करने वाले हैं। जैसे वृक्ष होता है, वो अपने फल के द्वारा कितने पक्षियों का पालन करता है, अपनी छाया के द्वारा कितनों को वो शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही राजा होता है, वो राजा कितने आदमियों की सेवा करता है, क्या उस सेवा से कल्याण नहीं होता है, संन्यास से कल्याण होता है। खादन्ति हस्तिनम न्यासैः, महाराज एक हाथी कितना बलवान होता है, हाथी में इतना बल होता है कि उसके सूंड में सिंह आ जाए तो सूंड को तोड़ सकता है। सिंह भी हाथी के सामने युद्ध नहीं करता, वो पीठ पीछे आकर उसके मस्तक के ऊपर चढ़ करके वो उसको फाड़ता है, तब आकर के हाथी मारा जाता है, सामने आओ। और वही हाथी यदि बलहीन होकर यूं पड़ा रहता है तो उसको कीड़ियां उसको खा करके मार देती हैं। कीड़ियां खादंती हस्तिनम न्यासे क्रव्यादा बहवोप्युत है, कौआ आकर उसकी आंख में टॉन्च मार मार करके उसको मार सकता है। इसलिए यदि आप सन्यासी हो रहे हैं तो आप ये खप्पर लिए है, कोई इस खप्पर को लेकर फेंक के तोड़ देगा, फोड़ देगा, ये हंडी लिए है, हंडिया कोई फोड़ देगा, कपड़े आपने लिए कोई कपड़ा आपके फाड़ देगा, लोग बच्चे कोई आपका तिरस्कार करेंगे, उस समय आपके मन की अवस्था क्या होगी? शोक होगा ना, चिंता होगी ना, तो आपके अंदर तो संसार भरा पड़ा है, कहां आपने त्याग किया। अच्छा यदि आप सब कुछ ही त्याग रहे हो तो एक मुट्ठी धान है इसको भी आप क्यों ले रहे हो, इसका भी त्याग करो, ये भी तो शरीर धर्म है। यदा अनेन समम कुर्वन, यदि करते हो तो सब समान रूप से त्याग करो। यदि आपको एक धान मुट्ठी की आवश्यकता की प्रतीति होती है तो फिर त्याग कहां हुआ? त्याग तो अंदर से आवश्यकताओं को मिटाने का नाम है महाराज। इसलिए मेरे कठोर वचनों को आप कोमल भाव से सुनिए और इस पृथ्वी का शासन कीजिए, दान दीजिए, यज्ञ कीजिए। जो बराबर दूसरों से दान लेता है और जो निरंतर दान करता रहता है, उन दोनों में जो अंतर है उसको आप अच्छी तरह से समझिए। दान देना भी एक बहुत श्रेष्ठ काम है, लेकिन उसमें विचार की आवश्यकता है। जिस ब्राह्मण का स्वभाव ही पड़ गया मांगने का, जो हरदम मांगते ही मांगते रहता है, वह दक्षिणा नल में दी हुई, दावा नल में दी हुई आहुति के समान व्यर्थ होता है। उसको दान नहीं देना चाहिए, दान उसको देना चाहिए जिसके मन में कुछ भी लेने की इच्छा नहीं। आ गया स्वाभाविक तो ठीक है, मांगता फिरता है उसको नहीं देना चाहिए। आप विचार कीजिए, अच्छे पुरुषों के पास आपका धन जाए, मोक्षकामी पुरुषों के पास आपका धन जाए। यदि राजा नहीं होता होगा तो मोक्षकामी संतों का, महापुरुषों का भरण पोषण कैसे होगा? कितना बड़ा काम होगा आपके द्वारा। केवल त्याग करने से, केवल भिक्षुक होने से, कोई श्रेष्ठ पुरुष नहीं होता है महाराज। श्रेष्ठ पुरुष वो होता है जो सबके साथ सरलता से स्वार्थ का त्याग करता है। रिजुस्तु यो अर्थम त्यजति, अर्थ का माने स्वार्थ का त्याग करता है, वो त्यागी होता है। बाहर से तो आसक्ति के समान काम में लगे रहो, भीतर में कोई आसक्ति मत रखो, वो महाराज मुक्ति का अधिकारी होता है। बाहर से कपड़े रंग लिए हमारे जैसे, परिव्रजंती दानार्थम, और पेट पालने के लिए मुंड मुंडा करके भिक्षा मांगते रहते हैं, ऐसे लोग व्यर्थ में ही बंधन में पड़ जाते हैं। अरे लाल कपड़ा किया है तो इसका अर्थ है कि अपने अंतःकरण के अंदर ललाई रखो, प्रेम रखो, भगवान का प्रेम बनाओ, इसके लिए लाल कपड़ा है। पर लाल कपड़े से भिक्षा मिल जाती है, लाल कपड़े का आदर होता है, ऐसा समझ करके जो ये कपड़े रंगते हैं वे धर्मध्वजी हैं, मुंड मुंडा लेते हैं और लाल कपड़ा कर लेते हैं वृत्त्यर्थम, केवल अपना पेट गुजारा करने के लिए वो केवल धंधा करते हैं अपना पेट चलाने का, वास्तव में वो धर्मध्वजी है। महाराज आप तो उन जितेंद्रीय महापुरुष जो मुंड मुनाने वाले हैं और अच्छे संत जो गैरवा वस्त्र पहनने वाले, उनका भी भरण पोषण करने का लाभ ले सकते हो। ये लाभ आपको राज्य छोड़ने से कैसे मिलेगा, इत्यादि इत्यादि बातें बताई। तो जनक राजा ने कहा कि देवी, स्त्री का यही सबसे बड़ा काम होता है। पुरुष समझता है कि मैं ही सब कुछ जानता हूं, बहुत श्रेष्ठ हूं, नहीं, स्त्री की सलाह लेनी चाहिए। स्त्री शरीर का और बुद्धि का, विचारों का, सबका सहायक होता है। स्त्री शरीर की सेवा करती है, स्त्री बुद्धि और विचार से भी अपनी सहायता करती है। बहुत अच्छा किया, वो अपने संन्यास व्रत से लौट गए, ये बात आपने क्यों नहीं सोची। हम भी उसी भावना से आपको कहते हैं कि आप ये इस संन्यास धर्म से लौट आइए। युधिष्ठिर जी कहते हैं, अर्जुन वेदा हम तात शास्त्राणी, में शास्त्र पढ़ावाऊं रे, धर्म शास्त्र क्या है, मोक्ष शास्त्र क्या है, ये मैं पढ़ावा हूं। कहां कर्म करना चाहिए, कहां कर्म छोड़ना चाहिए, इसका भी मुझे ज्ञान है। तुम लोग मुझे ऐसा उपदेश देते हो जैसे मैं कोई बिल्कुल जानता ही नहीं हूं। आकुलानी च शास्त्राणी हेतु भी चिंतितानी च, शास्त्र में परस्पर में विरुद्ध बातें कही जाती हैं, उनका मैं समाधान करना जानता हूं, और उनमें एक निश्चय कौन सा ठीक है ये भी मैं करना जानता हूं। अर्जुन तुम तो केवल शस्त्र चलाने वाले हो, इस पृथ्वी के ऊपर तुम बहुत बड़े शूरवीर हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु शास्त्र में तो तुम्हारी शूरवीरता नहीं है, शस्त्र में ही है। आज इस पृथ्वी के ऊपर जो शास्त्र का मर्म भेदी कोई होगा तो वो भी मेरी बात का समर्थन करेगा, मेरी बात उसको प्रिय लगेगी। अर्जुन बुरा मत मानना, तुम मेरे से प्रेम रखते हो और तुम मेरे से छोटे हो। बड़ा भाई छोटे भाई को डांट भी सकता है, फटकार भी सकता है। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने हमारे सामने खुलकर विचार रखे। परिवार में स्नेह तभी होता है जब आपस में खुल करके एक दूसरे के विचार रखे जाए। तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्या जाते हो, तो मैंने भी खुल करके तुम्हारे सामने कहा, तुमने भी खुल करके मुझे कहा, मुझे उससे बहुत प्रसन्नता हुई। अंदर ही अंदर कुटते रहो क्या फायदा, तुमने हमारी कमजोरी को बताया, मैं खुश हो गया, लेकिन मैंने भी तुमको बता दिया कि तुम इसको जानते नहीं हो, मैं जानता हूं। भला आदमी कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। तुम जो है युद्ध के अंदर खूब अच्छी तरह से जानते हो, कुशलता है तुम्हारी, और मैं ये मानता हूं कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान योद्धा कोई नहीं है। धर्म का स्वरूप बहुत गहरा होता है अर्जुन, वहां तक बुद्धि पहुंचना बड़ा मुश्किल है। समुद्र के पैंदे के बीच में रखा हुआ जैसे मणि भाग मिलता नहीं है, ऐसे ही धर्म के समुद्र में सूक्ष्म विषयों का ज्ञान बड़ा दुर्लभ होता है। अर्जुन, तुमने तपस्या करके बड़े बड़े वरदान प्राप्त किए हैं, लेकिन कभी बड़े बूढ़े महात्माओं के पास बैठकर अपने आत्म कल्याण के लिए विचार नहीं किया, इसीलिए तुम ऐसी अटपटी बातें करते हो जिन बातों से संसार की तरफ प्रवृत्ति होती हो। जो व्यक्ति जो महापुरुष तपस्या में लगे रहते हैं, कोई त्याग में लगे रहते हैं, और कोई विधि विधान से ऊपर उठकर, कर्मकांड से ऊपर उठकर केवल ब्रह्म चिंतन में लगे रहते हैं, ऐसे महापुरुषों की गति को पहचानना बड़ा मुश्किल है। कोई स्वाध्याय में लगे हुए हैं, कोई जप में लगे हुए हैं, कोई अपने इंद्रियों के संयमन में लगे हुए हैं, लेकिन अपने भीतर रहने वाले अज्ञान का नाश करने वाले बहुत कम होते हैं। क्रियाओं के द्वारा साधन करने वाले बहुत हैं। अबुद्धिजम तमस त्यक्त्वा, मूर्खता से जो तमोगुण छाया है उसको त्याग करने वाले बहुत कम हैं। त्यागवतांग गता, चले गए, कहां है आजकल ऐसे पुरुष। मोक्ष मार्ग से जो चलने वाले होते हैं वे ही वास्तव में समस्त दुखों का नाश कर लेते हैं। इसलिए भाई, सार असार को ग्रहण करने के लिए बार बार शास्त्र चिंतन करना चाहिए, तब सार असार का ज्ञान होता है। और केवल शास्त्रों को पढ़ लेंगे तो केले के छिलके के समान, इसमें केले का छिलका दिया है, केले का पत्ता होता है, नहीं तो भाई प्याज के छिलके के समान, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्या है उसका पता नहीं चलता है। आत्मा का स्वरूप बड़ा गहन है, जो नेत्र के द्वारा क्या, वाणी के द्वारा क्या, बुद्धि के द्वारा भी समझ में नहीं आ सकता। पहले अपने इंद्रियों को रोको, जो विषयों के अंदर उच्छृंखल होकर के दौड़ रही है उनको रोको, उसके बाद ही तुम इस बात को पहचान पाओगे। पार्थ या न बिजानी में है कस्तान ज्ञातुम अर्हति, जिसको हम जानते ही नहीं है उस मार्ग के विषय में अपने को कहने सुनने का क्या अधिकार है। और जो मन, जो महापुरुष साधना में लगे हुए हैं, उन महापुरुषों को हम जान भी कैसे सकते हैं। इसलिए तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, त्याग के द्वारा बड़े बड़े तत्वविद महात्मा ही आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, कर्म कांड में लगे हुए नहीं कर सकते। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा तो उन ऋषियों में एक देवस्थान नाम के ऋषि थे, वो कहने लगे महाराज मेरी भी बात सुनो, कि आप भी बताइए ऋषिवर। देखो, अर्जुन ने जो ये कहा है, न जायोस्ति धनादिति, जो राज लक्ष्मी मिली है ये आपके कल्याण की सामग्री है, ये वास्तव में बहुत गहरी बात कही है। अर्जुन आपसे छोटे हैं, छोटे होने के नाते आप अर्जुन को जैसे भी कहोगे दब जाएंगे, लेकिन इनकी बात गलत नहीं है। कल्याण प्राप्त परिस्थिति से होता है, जो कल्याण की परिस्थिति जो परिस्थिति आई उसका सदुपयोग करें उससे कल्याण होता है। तो अभी आपको जो परिस्थिति मिली है, राजलक्ष्मी मिली, उससे आप कल्याण कर सकते हो। आपने धर्म पूर्वक युद्ध किया है, उसका त्याग, राजलक्ष्मी का त्याग उचित नहीं है। वैसे भी ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, चार आश्रम है। उन चार आश्रमों में ब्रह्म प्राप्ति करने के ये तो चार उपाय हैं। चारों उपायों से, ब्रह्मचर्य आश्रम से, गृहस्थ आश्रम से, कोई वानप्रस्थ से, कोई संन्यास से, आप ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हैं। और कोई क्रम से करते हैं, कोई एक से भी कर लेते हैं। इस समय आप बड़े बड़े यज्ञ कीजिए। स्वाध्याय में लगे हुए अच्छे अच्छे जो ऋषि मुनि यज्ञ करते आए वो यज्ञ कीजिए। कोई कर्मनिष्ठ है, कोई तपोनिष्ठ है, ऐसे महात्मा लोग हैं, उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति अपने धन का बहुत बड़ा हिस्सा परोपकार में, यज्ञ आदि में लगा देता है, वो व्यक्ति धन का सबसे अच्छा उपयोगी होता है। उस व्यक्ति की धन में ममता नहीं रहती है। युधिष्ठिर, तुम धन का स्वरूप से त्याग करोगे तो इसमें तो ममता हो सकती है, पर धन का यदि सदुपयोग करोगे तो ममता नहीं होगी। ये हम आपको बहुत गूढ़ रहस्य की बात बताते हैं। देखो, बहुत गहरी बात है ये, बहुत अच्छी बात है, संतों की बात। धन ले, धन को अच्छे काम में खर्च करेगा, उसकी धन में ममता नहीं होगी। अपने भोग, अपने सुख, अपने आराम, अपने पर ही खर्च करेंगे, उसकी धन से ममता नहीं मिटती। और अपने पर भी खर्च नहीं कर सकता, उसको खर्च करने में डर लगता है। हाय कम हो जाएगा तो आगे क्या करेंगे, हाय कम हो जाएगा तो आगे क्या करेंगे। और बताते हैं, कृच्छात् च द्रव्य संहारम कुर्वन्ति धन कारणात्। कई कई आदमी ऐसे होते हैं जो केवल धन में ही लगे रहते हैं और बहुत कष्ट उठाते हैं धन प्राप्ति के लिए। बड़ी प्यास रहती है धन की और अच्छे काम में खर्च नहीं करते। उनको भ्रूण हत्या जैसा महान पाप लगता है। यहां भी लिखा है, गर्भपात भ्रूण हत्या जैसा कोई पाप नहीं होता। इतना बड़ा पाप लगता है जो केवल पैसे के लिए रात दिन लगे रहते हैं। पैसे का भी सदुपयोग, धन का सदुपयोग होना चाहिए। अनर्हते यद ददाति, अनधिकारी को जो दे देता है और अधिकारी को नहीं देता है तो उसका धन व्यर्थ चला जाता है। दान धर्म बड़ा दुष्कर होता है, उसको भी भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है। देखो, आज इंद्र स्वर्ग के अंदर विराजमान है, वो यज्ञ करने के कारण से है, सब देवताओं में श्रेष्ठ कहलाता है। आज ये महादेव है, कितने बड़े स्थान पर है, ये महादेव भी एक बहुत बड़ा यज्ञ किए और उस यज्ञ में अपने आप की आहुति दे दी, इसलिए आज देवों में महादेव कहलाते हैं। महाराज मरुत ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, वहां पर स्वयं लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और सब पात्र उन्होंने सोने के बना दिए। तो कितना अच्छा सदुपयोग किया। तो जो धन का सदुपयोग करता है उसके पास लक्ष्मी अपने आप वैसे ही आ जाती है, जैसे कोई पानी को कितना ही रोके वो अपना रास्ता बना ही लेता है। पानी इधर से आ रहा है, आप यहां रोक दे, इधर निकल जाएगा, इधर रोक दे, इधर निकल जाएगा, इधर उधर निकल जाएगा। पानी अपना रास्ता बना ही लेता है। ऐसे ही लक्ष्मी जी उसके वहां आ ही जाती है। अच्छे से अच्छे काम में लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए। हरिश्चंद्र वे कितने बड़े यज्ञ किए तो उनका सारा जो है शोक दूर हो गया और वे इंद्र के समान आज स्वर्ग के अंदर आनंदित हो रहे हैं। देखो महाराज, मनुष्य को संतोष प्राप्त करना चाहिए। जो आपको राज लक्ष्मी मिली है उसको कम मत मानो, जिसको जो मिला है उसको खूब करके मानना चाहिए कि मेरे पास खूब है, कोई कमी नहीं है। महाराज, दूसरे के धन को देख करके अपने अंदर उससे आगे बढ़ने की स्पर्धा होती है, यह वास्तव में नरक का रास्ता है। इसके पास ज्यादा हो, इनके पास ज्यादा हो गया तो मेरे पास कम है, अब मुझे दुख हो गया। इनके भागी का ये जाड़े, मेरे भागी का मैं जानूं। जैसे दूसरे व्यक्ति की बीमारी से हम अपना कोई संबंध नहीं मानते, ऐसे दूसरों के पास धन को देख करके अपने अंदर और धन प्राप्ति की इच्छा क्यों होनी चाहिए महाराज? इसी का नाम त्याग है। दूसरा आदमी बीमार है तो ये कभी नहीं आता कि ऐसी बीमारी हमारे हो जाएगा, अरे बाबा ऐसी बीमारी न लगे। लेकिन दूसरे के पास धन हमसे ज्यादा है तो हमारे भी धन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदा संघर्ते कामान कूर्मोंगानीव सर्वशः तदा आत्म ज्योतिरचिरात् स्वात्मन्येव प्रसीदति। जैसे कछुआ समय पर अपने कवच में से मुंह टांग पैर निकाल कर चलता है, फिर अपने आप में संकुचित हो जाता है, ऐसे ही व्यवहार काल में इंद्रियों के द्वारा विषयों का संपर्क करता है और वापिस इंद्रियों को समेट लेता है, वह व्यक्ति अपने ही आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित रहता है। उसके अंदर किसी से कोई भय नहीं होता है, उसके अंदर काम और द्वेष की भावना नहीं रहती है कि ये मुझे मिले ऐसा मुझे मिले, कोई भावना नहीं रहती, राग द्वेष नहीं होता। और आत्मानं पश्यति, आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, किसी से द्रोह नहीं करता है, किसी से आकांक्षा नहीं करता है, मन से वचन से और कर्म से वह सबके साथ प्रेम का बर्ताव करता है, उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है। अंधे साम प्रशंसन्ति, अन्य साम, देखो संसार में आत्म कल्याण करने के कई उपाय हैं। कोई तो कहते हैं कि भाई प्रेम पूर्वक बर्ताव करो, कोई कहते हैं कि यत्न करो, कोई कहते हैं कि यज्ञ करो, कोई कहते हैं संन्यास में जाओ, कोई कहते हैं दान पुण्य करो, कोई कहते हैं कि नहीं दान लेने से भी कल्याण होता है, कोई कहते हैं सब कुछ छोड़ करके तूष्णीम ध्यायन्ते चुपचाप रहो और भगवान का भजन करो। कई लोग राज्य की प्रशंसा करते हैं, कई लोग इसका त्याग करते हैं, कई लोग राज्य आदि की प्राप्ति के लिए लड़ाई झगड़ा मार काट कितना ही कुछ करते हैं और फिर एकांत में जो है बैठ करके परमात्मा का चिंतन करते हैं। ऐसे अनेक उपाय करते हैं लोग, पर हमारी दृष्टि में तो यही है, किसी के साथ कोई द्रोह मत करो, यही सबसे बड़ा धर्म होता है। द्रोह नहीं करना, सत्य बोलना, अपने पास जो वस्तु है उसका ठीक विभाग करना, अपने धर्म के अनुकूल पुत्र आदि की प्राप्ति करना, स्त्री आदि की प्राप्ति करना, ये स्वयंभू मनु ने सबसे अच्छा गृहस्थ का धर्म बताया है। सत्पुरुषों का सत्कार करना, क्षत्रिय का शास्त्रों का चिंतन करना, और क्षत्रिय के लिए यह भी बताया है कि यज्ञ करना यह क्षत्रिय का काम होता है। इसलिए मनुष्य को इस प्रकार से अपने आप का विचार करते हुए यज्ञ आदि के अंदर आपको आगे बढ़ना चाहिए, संन्यास से आपको रुक जाना चाहिए। यहां फिर अर्जुन बोलते हैं कि महाराज, एक ऋषि ने भी आपको कह दिया है, जनक जी का उदाहरण भी हमने आपको समझाया है, पर महाराज अभी तक आपके आंख से टपकने वाले आंसू रुके नहीं है। आपको इस प्रकार शोकाविष्ट देखकर हमारा हृदय भी शोक में डूबता है। महाराज, क्षत्रियों का तो ये धर्म होता है, जब क्षात्र धर्म इतना कठोर है तो यह भी एक तपस्या है। न चाहते हुए भी हमारे सामने जो शत्रु रूप में शस्त्र लेकर खड़ा है उसके साथ युद्ध करना ही पड़ता है, वहां उसको मारना ही पड़ता है। ये क्षात्र धर्म है, ये तपस्या है। जैसे ब्राह्मण का धर्म तपस्या त्याग ये मरने के बाद भी काम आता है, इसी प्रकार से क्षत्रिय भी यदि युद्ध के अंदर मर जाता है तो उसको आगे जाकर इस तपस्या का फल मिलता है। क्षात्र धर्मो महारौद्र है। आपने किसी को मारने के लिए तो मारा नहीं था, हमने किसी को मारने के लिए नहीं मारा था। हे युधिष्ठिर महाराज, भरी सभा में द्रौपदी का इतना अपमान हुआ, इतने पर भी अपने लोग शस्त्र को जानने वाले थे, चाहते तो उस समय हम लोग भीमसेन आदि को सबको मार सकते थे, पर हमने नहीं मारा। कहां मारा इन सबको? युद्ध के अंदर मारा है। हमने अपने भाइयों को कोई लुक छिप करके नहीं मारा है। हमने जो ये युद्ध किया है ये धर्म पूर्वक युद्ध किया है। अगले हमको युद्ध के लिए चुनौती दे रहे हैं तब अपने युद्ध किया है। अब उस युद्ध के अंदर जो मरे हैं उन मरने वालों के लिए आप क्यों शोक करते हैं? क्योंकि उन सब की सदगति हुई है। जैसे कोई तपस्या करते हुए मरता है उसकी सदगति होती है, ऐसे क्षत्रिय का भी युद्ध के अंदर मरने से सदगति होती है, दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप संताप छोड़िए और क्षात्र धर्म से प्राप्त हुई लक्ष्मी का, राज लक्ष्मी का उपयोग क्षात्र धर्म के अनुसार ही आप परोपकार में, यज्ञ आदि में लगाइए। शत्रुओं को क्यों मारता है राजा? इसलिए मारता है कि शत्रु यहां अधर्म करेंगे, तो धर्म की रक्षा के लिए जो युद्ध होता है उसमें फिर आप मरने मारने को क्यों देखते हैं? मरना मारना गौण है, भाव क्या है? धर्म की रक्षा ना, तो इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। क्षत्रिय के लिए त्याग संन्यास ये धर्म नहीं है। क्षत्रिय का काम है प्रजा की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। क्षत्रिय का काम है राज लक्ष्मी का दान करना। क्षत्रिय का काम है राज लक्ष्मी से यज्ञ आदि करना, देवताओं का, पितरों का, सबका पालन करना। कितना अच्छा अपना क्षात्र धर्म, उसको आप छोड़ रहे हैं। इंद्रो वही ब्रह्मण पुत्र क्षत्रिय है कर्मणा भवत। इंद्र भी ब्राह्मण के पुत्र थे, कश्यप जी ब्राह्मण ही तो थे, कश्यप जी का बेटा इंद्र अदिति से पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण था, लेकिन युद्ध किया, दैत्यों का संहार किया तो वो क्षत्रिय हो गया। और उसने जगाने नवतीर नवे, उसने 90 को 9 से गुणा करो 810, 99 81 जीरो के जीरो, हाँ, तो 810 दैत्यों को अकेले ने मारा इंद्र ने। तो आज देखो इंद्र कहां ऊपर बैठा हुआ है, क्षात्र धर्म का पालन किया जबकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था। भवितव्यम, इसलिए आपको जो कुछ हो गया सो हो गया। अब शोक करने से कोई कर्ण वापिस आएगा नहीं, कोई अपने भाई दुर्योधन आदि वापिस आएंगे नहीं, और उनकी कोई दुर्गति होने वाली नहीं क्योंकि वो भी युद्ध में मरे। युद्ध में मरने पर जैसे भगवान का नाम लेते हुए कोई मरता है तो उसके पीछे के कोई पाप नहीं देखे जाते, ऐसे ही आपके भाई युद्ध के अंदर मारे गए हैं, उनका कोई पाप थोड़ा ही देखा जाएगा। युद्ध में मरे कल्याण हो गया। भवितव्यम तथा तच्च यद वृत्तम पुरुता पुरुषार्थ दिष्टम ही न राज शार्दूल न शक्यम अतिवर्ती। तुम जो कुछ हुआ सो हुआ, शोक करने से आप कोई हुए को तो बदल सकते नहीं। युधिष्ठिर जी बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। वहां वेदव्यास जी बैठे हुए थे। वेदव्यास जी महाराज कहने लगे, वत्स युधिष्ठिर, आज तुमको क्या हो गया? तुम सही बात भी स्वीकार करने में आज इतना संकोच करते हो। यदि तुमको ये पहले पता होता कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम सबसे ज्यादा चिंता इसी बात की कर रहे हो ना कि कर्ण मेरा बड़ा भाई था, इस शासन पर कर्ण का अधिकार था, और क्या घटनाक्रम हुआ, कर्ण हमारे द्वारा मारा गया, हमारा ही बड़ा भाई हमारी मां से पैदा हुआ, इस बात का सबसे ज्यादा दुख हो रहा है ना, इसमें आपका मोह है, आप इसको धर्म पूर्वक शोक मानते हो, हम इसको मोह का कारण मानते हैं। विभत्सोर वचनम सौम्य सत्यमेतद् युधिष्ठिरः शास्त्र दृष्टय परो धर्म स्थितो गारस्थ्यम आश्रितः। अर्जुन ने जो बात कही है, मैं अर्जुन की एक एक बात का खूब समर्थन करता हूं। अर्जुन ने कहा ये बिल्कुल ठीक बात कही, गृहस्थ धर्म बहुत ऊंचा धर्म होता है, तुम यदि गृहस्थ धर्म को छोड़ करके अरण्यवास लोगे ये तुम्हारा अधर्म हो जाएगा। गृहस्थ कितना ऊंचा होता है, देवताओं का भरण पोषण करता है, पितरों का करता है, अतिथियों का करता है, घर में रहने वालों का करता है, नौकरों का करता है, भिक्षुकों का करता है। गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा है जो ब्रह्मचारियों का, गृहस्थियों का, सन्यासियों का, वानप्रस्थियों का, देवताओं का, सबका भरण पोषण करता है। उसको आपने तमाशा समझ लिया, ये बहुत बड़ा आश्रम है, इसका पालन करना बहुत अच्छी तपस्या है, लोग इसके महत्व को समझते नहीं है, गृहस्थ के त्याग से मुक्ति समझ रखी है, ये अज्ञानता की पहचान है। क्षत्रियों का ये धर्म होता है विद्या प्राप्त करें, यज्ञ करें, दंड धारण करें, क्षत्रिय को दंड देना ये क्षत्रिय का धर्म होता है, ब्राह्मण दंड नहीं दे सकता, क्षत्रिय दंड दे सकता है। देखो हम तुमको एक कथा सुनाते हैं, एक सुद्युम्न नाम के राजा थे, उनका कल्याण दंड देने से हुआ है। महाराज युधिष्ठिर जी पूछते, महाराज वो कथा क्या है, दंड देने से कल्याण हो गया? दंड भी मामूली नहीं दिया, और दंड भी किसी मामूली आदमी को नहीं दिया, बड़ा कठोर दंड दिया, लेकिन उसका कल्याण हो गया। ये क्या इतिहास है महाराज? व्यास जी कहने लगे कि देखो, शंख और लिखित ये दो सगे भाई थे, ब्राह्मण थे, एक का नाम शंख, एक का नाम लिखित, ये दो भाई थे। दोनों भाई बड़े प्रेम से, एक बहुधा नाम की नदी थी उसके किनारे अलग अलग आश्रम में रहते थे, उनके आश्रम अनेक फल फूलों से भरे हुए रहते थे, बड़े तपस्वी थे, अच्छे ब्राह्मण। एक बार शंख के आश्रम में ये लिखित आ गया, और शंख कहीं बाहर गए हुए थे तो लिखित को भूख लग गई, वहां पर वृक्ष थे, अच्छे अच्छे फल थे, उन फलों को तोड़ लिया, और फलानी पातया मास है, फलों को तोड़ करके गिरा करके और वो खाने लगे। इतने में ही शंख आ गए, तो शंख ने पूछा, लिखित छोटा भाई था, लिखित शंख बड़े थे, लिखित ये तुमने फल कहां से लाए, कहां से ला के खम खा रहे हो? अरे भाई साहब, शंख जी, अपने ही भाई का घर अपना ही तो होता है, अपना भाई का घर अपना ही होता है, तो मैंने यहां के अच्छे फल देखे तो मैंने खा लिए। तो शंख को क्रोध आया, शंख ने कहा कि तुमने चोरी की है, किसको पूछ के लिया? जब तुम ये आश्रम मेरा मानते हो कि ये तुम्हारा आश्रम है, तुम्हारे आश्रम में मैंने खाया, जो मेरा आश्रम है, मेरी अनुमति के बिना तुमने फल कैसे खाए? ये बात तो है, क्या करें? जाओ राजा के पास जाओ और उस राजा से अपना ये पाप कहो और कहो कि मैंने चोरी की है, मुझे दंड दिया जाए। स्तेनम मातम विदित्वाच। अब राजा उस समय में क्या करते हैं वो राजा जाने, तुम राजा के पास जाओ कि मैंने चोरी की है। शंख वहां से राजा के पास पहुंचे। सुद्युम्न नाम के राजा को पता चला कि शंख ऋषि आए, इतने बड़े ऋषि, सॉरी लिखित, शंख नहीं लिखित, शंख के आश्रम में थे और लिखित ने ये फल खाए थे, तो शंख ने कहा कि तुम जाओ राजा के पास। तो वो लिखित था, वो राजा के पास गया। राजा ने बड़ा स्वागत किया, आइए लिखित महाराज, इतने बड़े ऋषि मेरे यहां आए हैं। उनके पैर धोए, ऊंचे आसन पर बैठाए। राजा ने कहा कि महाराज क्या सेवा करूं आपकी, आपने तो मुझे कृतार्थ कर दिया, आपका आना कैसे हुआ? ऋषि ने कहा देखो प्रतिज्ञा करो कि मैं जो कहूंगा उसको पूरा करना पड़ेगा। राजा चुप रहे कि महाराज आप आदेश दीजिए। देखो आज की बात है, मैं अपने आश्रम से बड़े भाई के आश्रम में गया और वहां मैंने फल खा लिए तो चोरी हो गई। इस चोरी के लिए आप मुझे क्या दंड देते हैं? क्योंकि चोरी का फल तो राजा दंड देगा ना, मेरे से चोरी होगी, दंड दीजिए। सुद्युम्न ने कहा कि महाराज आप मुझे दंड देने का सामर्थ्यवान मानते हैं, दंड देने का अधिकारी मानते हैं, तो दंड देने का अधिकारी दो गुणों से युक्त होता है, वो दंड भी दे सकता है और माफ भी कर सकता है। तो यदि आप मुझे दंड देने के लिए बोलते हैं तो मैं आपको माफ करता हूं, क्षमादान करता हूं, पधारिए महाराज, मैंने क्षमा दे कर दी। और बोलिए मैं क्या करूं? स भवान अभ्यनुज्ञात शुचिकर्मा महाव्रत ब्रूहि कामान अतो न्यास्वं करिष्यामि ते वच। महाराज अपने मुख से अपनी गलती कह देने के बाद वो चोरी रूप कर्म आपका रहा ही नहीं, तो मैंने आपको माफ भी कर दिया। और बोलिए हम आपकी क्या सेवा करें? तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये कोई दंड नहीं हुआ, और कोई यहां आपके यहां आता तो क्या उसको ऐसी क्षमा करते क्या? आपने कहा कि और कोई वरदान मांगो, मुझे तो आपको दंड देना ही पड़ेगा, दंड दीजिए आप मुझे। तो कहा अच्छी बात है महाराज, और कोई चोर होता तो मैं उसके हाथ काट देता, तो मेरे हाथ काटिए, आपको मेरे हाथ काटने पड़ेंगे, क्योंकि आपने मुझे वचन दिया है कि जो मैं कहूंगा वो करना, तो दंड दीजिए। औरों को देते हैं वो मुझे दे दीजिए। तो हाथ काट दिए साहब, दोनों हाथ काट दिए, बड़ी पीड़ा हुई, कटा हाथ वो अपने शंख के पास चला गया और जाकर के उन कटे हाथों से कि भैया मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे फल खा लिए। तो लिखित रोने लगा, तो शंख भी रोने लगा। शंख ने कहा कि तुम मेरे से छोटे हो, लेकिन मुझे कठोर बनना पड़ा, वास्तव में तुमसे धर्म का अतिक्रमण तो हो ही गया था, गलती तो तुमसे हो ही गई थी, और ये गलती यदि यहां तुम इसका फल नहीं भोगते तो तुमको यमराज जी दंड देते। इसलिए मैंने राजा से तुम्हें दंड दिलवाया, अब तुम जाओ और बहुधा नदी के अंदर स्नान करो, देवताओं को ऋषियों को इनको तर्पण करोगे, तर्पण करने के लिए मेरे हाथ तो है नहीं, जैसे भी हो यूं यूं देने लगा, यूं ऐसे यूं जल देने लगा, पितरों को देने लगा तो उसी समय उसके दोनों हाथ वापस पैदा हो गए, सुंदर कोमल पहले से भी बड़े अच्छे हाथ उसके पैदा हुए। तो वो आया वापिस शंख के पास कि भैया ये देखो मेरे तो वापिस हाथ आ गए, क्या कारण है? कहा कि देखो तुम्हारे हाथ कटे तो मैंने तपस्या की, प्रार्थना की, मंत्र उच्चारण किया, देवताओं ने, पितरों ने, भगवान ने, सब ने कृपा करके ये हाथ दे दिए। तो इतनी सी बात थी, तो हे मेरे बड़े भाई साहब, आप ही तलवार लेकर मेरा हाथ काट देते, मैं तो आपकी बात से ही मान लेता कि नहीं नहीं एतन एवं एतत मया कार्यम। देखो मुझे तुम्हें दंड देने का कोई अधिकार नहीं, मैं तुम्हें दंड कैसे दे सकता हूं? दंड देने का काम राजा का होता है, और तुम्हें दंड देने से राजा की मुक्ति हो गई और तुमने दंड ले लिया तुम्हारी मुक्ति हो गई। तो वही सुद्युम्न था, आगे जाकर दक्ष प्रजापति के वहां रहने लगा और परम सिद्धि को प्राप्त हो गया। इसलिए व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज, आपके भाई ने जो बात कही है, क्षत्रिय को दंड देना उसके कल्याण का काम है, तुम्हें किसी प्रकार से चिंतित नहीं होना चाहिए। और भी बताते हैं कि देखो तुम्हारे भाइयों ने जंगल में रहकर तुम्हारे कहे कहे अनुसार बहुत कष्ट उठाया, कितना अपमान का घूंट पिया है द्रौपदी के सभा के अंदर अपमान होने पर तुम्हारे कारण से, और आज इन भाइयों के द्वारा भी यज्ञ करके आपको और परिवार को और प्रजा को सुखी करने का मौका यार आप इसको छोड़कर जाना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। राजा का ये काम होता है कि किसी को भी दंड दे हो ठीक ढंग से दंड दे हो, विचार करके दे हो, देश काल प्रतीक्षीच है, देश काल की प्रतीक्षा करो, अपराध की गंभीरता पर विचार करो और फिर उसको दंड दे हो। राजा को देखो बहुत काम करने पड़ते हैं, जिस वैश्य के पास खूब गायें होती हैं उसके साथ रियायती का बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि वो गाय का पालन करता है। राजा को अपने पास ऐसे मंत्री रखने चाहिए जो तर्कशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र जानता हो, आन्वीक्ष की त्रयी वार्ता, दंड नीति सुपारगा, ऐसे उसके पास मंत्री होने चाहिए। पर महाराज एक आदमी पर कभी विश्वास मत करना, मंत्री भी कई बनाने चाहिए, कितना भी कोई गुणवान हो एक व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, एक एक विभाग में कई कई व्यक्तियों को रखना चाहिए, राजनीति ये बात सिखाती है। नहीं तो एक व्यक्ति पर विश्वास करने पर क्या पता उसका चित्त कब किस समय चला जाए, इधर उधर पता नहीं चलता है, राज्य का नाश भी कर सकता है। क्षत्रिय को दंड देने से कितना बड़ा लाभ होता है और युद्ध के अंदर मरने से कितना बड़ा लाभ होता है, ये हयग्रीव नाम के राजा से हमने देखा है कि महाराज ये हयग्रीव राजा कौन थे, बड़े शूरवीर थे, युद्ध के अंदर शत्रु लोग ललकारते थे तो उस युद्ध को स्वीकार करते थे, इसलिए वो पृथ्वी जयी सूरवीर हो गए थे। बड़े बड़े शत्रु उनके सामने कांपा करते थे। एक बार सब शत्रुओं ने मिलकर के उन पर आक्रमण किया, शत्रुओं से घिर गए और खूब उन्होंने घमासान युद्ध किया और उस युद्ध के अंदर उन्होंने वीरगति प्राप्त कर ली, मारे गए। तो मरने के बाद आज वे इंद्र के साथ स्वर्ग के अंदर बैठे हुए हैं। वाजिक ग्रीवो मोदते देवल हो कहे, इस प्रकार के वो वहां विराजमान हैं। ऐसे ही सेनजीत का उदाहरण देते हैं कि राजा एक सेनजीत थे। उन्होंने विचार किया, मन में ही विचार किया कि भाई ये काल चक्र सबको खाता है, ये राजा लोग इतने प्रमादी क्यों हो जाते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, मरा देते हैं, काल चक्र कितना गहन काम करता है। वास्तव में न किसी आदमी आदमी को नहीं मारता है, ये काल चक्र का ही ऐसा प्रभाव होता है। एक आत्मा के बिना सब इस काल चक्र के अंदर आ जाते हैं। काल चक्र है, ये सब जगह शासन लगाता है। देखो महाराज, बालक का जन्म भी काल के अधीन होता है, उसका यौवन काल के अधीन होता है और उसकी मृत्यु भी काल के अधीन होती है। राजा ने विचार किया, उस सेनजीत राजा ने, कि भाई मैं कैसा मूर्ख हूं जो मरे हुए के लिए शोक करता हूं। मरे हुए के लिए शोक करना तो बड़ी भारी हीनता की बात है। इस संसार में जन्म के बाद मृत्यु तो अवश्य होने वाली है, कोई बच ही नहीं सकता है। शोक स्थान सहस्राणी और हर्ष स्थान शतानी चाहे, संसार के अंदर शोक करने के तो हजारों जगह है, खुशी होने की तो बहुत थोड़ी जगह ही है। काल के रहते हुए कौन आदमी यहां सुखी रह सकता है? सुख और दुख का तो जोड़ा है, सुखस्य अनंतरम दुखम, दुखस्य अनंतरम सुखम। इसलिए मनुष्य को शाश्वत सुख के लिए सुख और दुख दोनों का त्याग कर देना चाहिए। मनुष्य देखता है कि ये मेरा बेटा मेरे काम आएगा, मेरी स्त्री मेरा पुत्र ये मेरे बहुत हितेशी है। अरे ईषदप्यंगदाराणाम पुत्राणाम वा चरा प्रियम, एक बार अपने स्त्री अपने पुत्र के इच्छा के विपरीत काम करके देखो तो सही, वो अपना अपना असली परिचय बता देंगे, उसी समय नाराज हो जाएंगे, खिन्न हो जाएंगे। ततो ज्ञास्यसि कह कस्य, तब ज्ञान होगा कि कौन किसका क्या लगता है। इस संसार के अंदर भाई जो भोले भाले आदमी वे बड़े सुखी रहते हैं। इसलिए महाराज आपको गृहस्थ में रहते हुए इसी प्रकार से कर्तव्य का पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के द्वारा, व्यास जी महाराज के द्वारा युधिष्ठिर जी को ऐसी बात बताई गई। अब युधिष्ठिर जी वापस इन बातों का जवाब देते हैं। देखो ये भूमिका क्या बन रही है, वो ये सारी भूमिका इस बात की बन रही है कि युधिष्ठिर महाराज वन में जाने की सोच रहे हैं, तो सब समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये पितामह भीष्म के पास जाने की भूमिका बन रही है और पितामह भीष्म उनको उपदेश देंगे, वही शांति पर्व है। ये महाभारत में इतनी लंबी चौड़ी उपदेश की बातें शांति पर्व के अलावा और जगह नहीं आती, कथा भाग ही आता है। इसलिए महाभारत की कथा करनी हो, शांति पर्व की कथा पहले हृदय में धारण कर लेनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण
नारायण नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण
नारायण नारायण
नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
श्रीमन् नारायण नारायण नारायण
सियावर रामचंद्र की
जय
मोर मुकुटवंशी अनंत श्री हरि रामदास जी महाराज की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय जय जय